काम तो होता है, लेकिन वास्तव में पुरुषों में उत्तम बनने वाला अपने को कोई अनुभव नहीं करता। वो पीरियड कब तक का है? हैं? 76 तक। जब एडवांस नॉलेज निकलती है, बाप आकर के समझाते हैं, तब बुद्धि में बैठता है कि अब हम कौन से युग में आ गए? पुरुषोत्तम संगम युग। माना पुरुषोत्तम की जब प्रत्यक्षता हो तभी तो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाएगा। पुरुषोत्तम नारायण की प्रत्यक्षता ही न हुई हो, चलो दो चार की बुद्धि में हुई हो, सब ब्राह्मणों की बुद्धि में न हुई हो, तो भी तो कहेंगे कि पुरुषोत्तम संगम युग है। क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो पहले छोटे रूप में होती है, फिर बाद में बड़ा रूप हो जाता है। तो पुरुषोत्तम संगम युग ये अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है। क्या कहा है? त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है। जैसे पुरुषोत्तम शब्द डालना है वैसे शिव जयंती मत कहो। क्या कहो? त्रिमूर्ति शिव जयंती जरूर शब्द क्यों कहा? क्योंकि बाबा जानते थे आगे चल के ऐसे भी ब्राह्मण निकलेंगे जो सिर्फ ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष करेंगे और बाकी दो मूर्तियों को गुम कर देंगे, उड़ाए देंगे। इसलिए बाबा ने ये खास बोला क्या कि त्रिमूर्ति शब्द जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। क्या कहा? ये नहीं कहा ब्रह्मा ही जरूरी है, ब्रह्मा जरूरी है ये नहीं कहा। क्या कहा? प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, इससे काम नहीं बनता। काम कब बनता है? जब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी से पहले प्रजापिता शब्द जोड़े। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब कहेंगे हम अम्मा के कुमार हैं तो दुनिया में बुरा मानते हैं। ये अपनी अम्मा का नाम बताता है, बाप का नाम नहीं बताता। अपने को अम्मा का बच्चा बताता है, जब बोलेगा तो वह अम्मा का नाम बोलेगा, बाप का नाम बोलता ही नहीं। तो ऐसा बच्चा कौन होता है संसार में? है? किसका बच्चा होता है? वैश्याओं का बच्चा होता है। जो वैश्याओं का बच्चा होगा वो अपनी अम्मा का तो नाम बताएगा, बाप का नाम नहीं बताएगा। तो बाबा ने हमको समझाया, क्या समझाया? कि प्रजापिता अक्षर जरूर डाल। हाँ, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो। प्रजापिता अक्षर जरूरी है क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। क्या कहा है? एक दो के नहीं, कम से कम चार तो मुख्य ब्रह्मा है जिनके चार मुख दिखाई जाती है। इसलिए बोला ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक ही होता है। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। क्या? प्रजापिता लिखेंगे तो जरूर साकार में प्रजापिता ठहरा। क्या? क्यों? क्योंकि प्रजापिता है साकार सृष्टि पर ही हमेशा होता है। जब सारी प्रजा का पिता है, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सबका पिता है, तो वो इस सृष्टि पर अंत तक रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो वो सबका पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, इसलिए उसका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और दूसरे जो ब्रह्मा है, सारे मनुष्य मात्र उसको अपना माँ अथवा बाप नहीं कहेंगे। कौन कहेंगे? ब्रह्मा को अपना बाप या माई बाप कौन कहेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे तो वो कहेंगे ये हमारा माई बाप है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं आया हुआ है, क्या बोला अव्यक्तवाणी में, क्या बोला? सबके मुख से निकलेगा हमारा बाप आ गया। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। इसलिए मुरली में क्या बोल दिया, ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी होता है लेकिन प्रजापिता कभी सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। प्रजापिता को ऑलराउंड इस सृष्टि पर पूरा पार्ट बजाना है। ब्रह्मा की सोल के फिर भी 50 वर्ष कम हो जाएंगे, या जो भी दूसरा ब्रह्मा होगा, तीसरा ब्रह्मा होगा, चौथा ब्रह्मा का टाइटलधारी होगा, क्योंकि बोला है बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम हो जाते हैं। तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है लेकिन प्रजापिता का भी सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। प्रजापिता का एक साकार सृष्टि पर आज से अंत तक पार्ट है। इसलिए बोला कि प्रजापिता अक्षर भी जरूर डालो, पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर डालो और त्रिमूर्ति शब्द भी जरूर डालो। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं, इसलिए क्या लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा लिखने से ये साबित हो जाएगा कि वो सूक्ष्म वतनवासी नहीं है, जहां प्रजा है वहां प्रजा का बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो प्रजापिता तो यहां है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता, क्या कहा उन्होंने, क्या नाम रख दिया? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दादा लेखराज का नाम क्या रख दिया, प्रजापिता ब्रह्म। तो ये रंग हुआ या राइट हुआ, ये तो रंग हो गया, क्योंकि वो तो सूक्ष्म वतनवासी बन गए। सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो प्रजापिता साबित हो नहीं सकते। इसलिए बोला कि प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। ब्रह्मा और विष्णु का तो दिखाते हैं नाभि से निकला, क्या निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, माने ब्रह्मा पहला पहला नहीं है, ब्रह्मा से भी पहले कौन है, विष्णु है। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात नहीं है, क्या नाभि की क्या खास बात होती है, हाँ शरीर में जहाँ नाभि होती है उस स्थान पर 16,000 नसें नाड़ियां गंदे खून की और अच्छे खून की, क्या लेफ्ट साइड की गंदे खून बहाने वाली, गंदे संकल्पों का खून बहाने वाली, और राइट साइड की स्वच्छ खून का, स्वच्छ खून रूपी संकल्पों का खून बहाने वाली श्रेष्ठ आत्मा 8,000। 8 और 8 16,000 नसें नाड़ियां इस शरीर में हैं। जैसे इस शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं, वैसे वो जो विराट पुरुष है, क्या जो विराट पुरुष है सारी सृष्टि का बाप है, उस बाप में उस बीज में कितनी आत्माओं का वास है, 16,108 आत्माओं का वास। विशेष प्रकार की वो आत्माएं हैं, नसों नाड़ियां, नस और नाड़ी के रूप में, जिनके संकल्पों की गुह्य गति संसार की रचना करती है। श्रेष्ठ संकल्पों की गुह्य गति सतयुग और त्रेता का निर्माण करती है और गंदे संकल्पों का खून द्वापर और कलयुगी नारकी दुनिया का निर्माण करता है। तो तुम बच्चों को ये बात का ज्ञान मिला है, यहां नाभि आदि की कोई बात नहीं है कि स्थूल नाभि की बात है। क्या विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारा चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों में समझा सकते हो। कैसे बनते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, कैसे बनते हैं और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, है? जरूर यज्ञ के आदि में कोई विष्णु रूप होगा। क्या विष्णु किसे कहें, जिन्हें पति पत्नी के आपस में संस्कार मिलते हो उनको कहेंगे विष्णु, और संस्कार टकराते हो तो विष्णु नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जाएगा, विष्णु नहीं कह सकते, फिर क्या कहा जाएगा। संस्कार अगर संस्कार टकराते हैं तो क्या कहा जाएगा, विष्णु देवता नहीं है, आसुरी संस्कार वाला है। कलयुग में जितने भी पति पत्नी हैं उन सबके संस्कार आपस में टकराते हैं, लेकिन सतयुग में जो पति पत्नी होते हैं उनके संस्कार टकराते नहीं, क्योंकि वो विष्णु रूप होते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, जरूर यज्ञ के आदि में कोई ऐसा जोड़ा था जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ, और फिर जरूर उसे ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा की नाभि से क्या निकला, है विष्णु निकला। विष्णु निकला माने विष्णु की प्रत्यक्षता हुई, कौन से सन में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, कहेंगे आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो कौन सा सन आता है, सन 76 आता है। सन 76 में विष्णु रूप कौन बनने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ब्रह्मा ने 69 में शरीर छोड़ा और 69, 70, 71 to 76 तक जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई तब तक ये 7-8 साल विष्णु की नाभि हो गई। क्या उस नाभि से कौन प्रत्यक्ष हुआ, विष्णु प्रत्यक्ष हो जाता है, वो भी पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या जैसे ब्रह्मा सरस्वती को 33 साल लगते हैं व्यक्त से अव्यक्त होने में, वैसे ही जो विष्णु रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं हैं उनको भी 33 वर्ष का समय चाहिए व्यक्त पाठ से अव्यक्त पाठ बजाने में। क्या 69 से 33 ईयर से जोड़ देने पर कौन सा वर्ष आता है, 2002। जैसे वहां 3 साल के अंतर में मम्मा बाबा अव्यक्त हो गए, वैसे ही 69 के बाद 33 वर्ष के बाद बाबा अव्यक्त हो जाता है। कौन सा बाबा, जो नर से नारायण बनता है और वो आदि शक्ति भी अव्यक्त हो जाती है। जैसे 3 साल का अंतर वहां था 65, 66 और 68 के बीच में, ऐसे यहां भी एडवांस पार्टी में मम्मा बाबा कब अव्यक्त होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, पता ही नहीं चलता कहां है, सबसे नहीं मिलते, कोई कोई विशेष बच्चे हैं जिनसे मिलते हैं, नयों नयों से आकर खास मिलते हैं, कोई कोई पुरानों से भी मिलते हैं, तो सन 98 और 2002 इसमें एडवांस पार्टी में मम्मा बाबा क्या हो जाते, गुप्त हो जाते। तो बोला ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, वो पीरियड कौन सा है, सारा चक्र का ज्ञान तुमने बच्चों उन चित्रों में समझा सकती हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है क्या, छोटी अकल वाले बच्चे होते हैं तो उनको चित्रों पे समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आराम से समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, आ से आम, का से कबूतर, तो बुद्धि में बैठ जाता है। तो बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है, किसको समझाने में है, जो बच्चा बुद्धि है जिन्होंने सिर्फ बेसिक नॉलेज पढ़ी है, अगर उनको बिना चित्रों के समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में इतनी जल्दी बैठेगा नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र खा करके फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए, जब बट्टी बनी तो नाम दिए थे, फिर कितने चले गए क्या, बाबा ने आदमी क्या किया, बहुत से बच्चों को पहले से ही नाम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर उनमें से बहुत से चले गए, कितने चले गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं होती है, माना पहले बाबा माला बनाते थे और माला के मां के उनको नामकरण भी करते थे, बाद में उनमें से बहुत से भाग गए क्या, जीत बना दिया, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, दो दिन रहकर साथ न जाने किधर गए, वो कौन से बच्चे थे, जो आदि में थे वही अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। तो बोला आदि में माला बनाते थे, भट्टी बनी तो नाम दिए, अब ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं, क्या कहा, ब्राह्मणों की माला होती नहीं, उनके नंबर नहीं दिए जा सकते, माला किसकी होगी है, हाँ जो फरिश्ताई स्टेज को पकड़ लेंगे, फरिश्ता सो देवता बनने की स्टेज को पकड़ लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे होते हैं कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहाचारी बैठती रहती है। बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है सब अनुभव, ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है, क्या कहा, हाँ आदि में बनाते थे लेकिन वो बनाना रंग था, ब्राह्मणों की माला कब बनेगी, लास्ट में, हाँ पिछाड़ी में बनती है, समझाना चाहिए जो रुद्रमाला सो ब्राह्मणों की अंत की माला, क्या कहा, जिन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया, रौद्र माना विकराल रूप धारण कर लिया, वो रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्रमाला के वत्स माला के दाने बनते हैं, ये माला पहले तैयार होती है। रुद्रमाला मशहूर है, रुद्रमाला सो रुंडमाला, रुंडमाला सो रुद्रमाला, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण करके देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे, 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं, कौन कौन माला के मणके, तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। कब से? द्वापर युग से दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है क्या? अंत में माला बनेगी तो, लेकिन माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। किसको? बाबा को। कौन से? ऊपर वाले बाबा को या नीचे वाले को? मेहनत कौन अनुभव करेगा? ऊपर वाले को तो कोई मेहनत की बात ही नहीं। तो बताया माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहां इधर उधर हिले डुले नहीं। क्या? मोतियों को बड़ी संभाल से टेबल पर रखा जाता है, जैसे पीसी सरकार जादूगर कोई चीज प्रदर्शन करता है तो कहां रखता है? टेबल के ऊपर। और फिर सुई से उनको डाला जाता है। क्या? उन मणकों को काय से पिरोया जाता है? सुई से डाला जाता है। कहां ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। क्या पढ़ते हैं? कहां के लिए? इस दुनिया में प्राप्ति करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। कहां के लिए पढ़ते हैं? नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। बाबा ने रात्रि को भी कहा स्लोगन बनाओ, हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर के समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बना करके बच्चों को सिखाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। किसकी है? तुम्हारी। तुम्हारी मानो है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिला है। किसकी वैल्यू हुई? ड्रामा में, नाटक में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? हीरो हीरोइन की। तो तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बन जाते हो। क्या? जब 84 का चक्कर पूरा करते हो तो कैसे मिसल बन जाते हो? कौड़ी मिसल। कौड़ी मिसल क्यों कहा है? कौड़ी का जैसा शेप होता है उसी में जिनकी बुद्धि लगी रहे तो कैसे हो गए? कौड़ी जैसा जीवन हो गया। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? क्या कहा? ये किसकी बात बता रहे? ये जीवन कहानी किसकी बताई है? हीरो हीरोइन की जीवन कहानी बताई। जब शूटिंग पीरियड होता है तो शूटिंग में सिर्फ सतयुग की शूटिंग नहीं होती, कौन कौन सी युगों की होती है? चारों युगों की शूटिंग होती। तो जब सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो बुद्धि कहां लटक जाती है? हैं? कौड़ियों में बुद्धि लटक जाती है तो जीवन कैसा हो गया? कौड़ी मिसल। तो इसलिए बाबा बोलते हैं हीरे जैसा तुम बनते हो फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बन जाते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? किसके पिछाड़ी पड़ना चाहिए है? जो हीरे जैसे बनने वाले, चमक, ज्ञान की चमक मारने वाले बच्चे हैं, उनकी माला बनाने के पीछे पड़ना चाहिए। किसकी माला बनाने के पीछे पड़ना चाहिए? मेहनत तो लगती है, वो तो बताया। क्या? अच्छा काम करने में मेहनत तो होती है, तो कौड़ियों के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। हीरे जैसा जन्म मिलता है ऐसे भी नहीं, कोई घर बार तुमको छोड़ना है। क्या कहा? ये भी नहीं कहता हूं कि माला बनाने का काम करने के लिए तुमको कोई, हीरों की माला बनाने के लिए तुमको कोई घर बार छोड़ना पड़ेगा। बाबा तो कहते हैं घरगस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और षष्ठी चक्र की नॉलेज को जान करके दैवी गुण धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जावेंगे। सब दैवी गुण धारण करेंगे तो बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट। क्या एम ऑब्जेक्ट बताइए? हीरे जैसा बनना, ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी, इस चित्र को बहुत महत्व देना है। कौन से चित्र को? जो नर से नारायण बनने का चित्र है उस चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, प्रदर्शनी म्यूजियम में बहुत सर्विस करनी है। क्या कहा? मेहनत करनी है प्रदर्शनी में और म्यूजियम में। क्या अंतर होता है प्रदर्शनी म्यूजियम में? प्रदर्शनी में जो चित्र होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखे जा सकते हैं। प्रदर्शनी चलती फिरती भी हो सकती है और म्यूजियम, म्यूजियम एक ही जगह स्थापन कर दिया जाता है। तो ये नहीं कहा कि सिर्फ म्यूजियम की ही सेवा करनी है या सिर्फ प्रदर्शनी की ही सेवा करनी है। काय की करनी है? म्यूजियम की भी सेवा करनी है और प्रदर्शनी की भी करनी है। लेकिन कौन से चित्रों की सेवा करनी है? हैं? जड़ चित्रों की। जड़ चित्रों का प्रदर्शन, जड़ चित्रों का म्यूजियम बनाने की सेवा नहीं करनी है। क्या करना है? चैतन्य चित्र बनना है और चैतन्य चित्र बनाना है और चैतन्य चित्रों का प्रदर्शन संसार वालों को कराना है। तुम बच्चों को बहुत सेवा करनी है। विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनेंगे? क्या कहा? हैं? प्रजा भी कब बनेंगे? पहले जन्म की। हैं? टीटी मार्ग की सर्विस करने से प्रजा नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? विहंग मार्ग की सर्विस करने से तुम प्रजा बनेंगे, पहले जन्म की। पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है। पहले जन्म की प्रजा में कितने होंगे? हैं? 9 लाख सितारे गाए हुए हैं आसमान। कितने गाए हुए हैं? 9 लाख। 9 लाख में 4.5 लाख तो रात में दिखाई पड़ते हैं। क्या? 4.5 लाख रात में दिखाई पड़ते हैं, जो चंद्रमा के उजाले में दिखाई पड़ते हैं। वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। क्या करते हैं वो सितारे? अपनी टिमटिमाहट प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन दिन में भी तो कोई सितारे होंगे आसमान में? नहीं होंगे। होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपनी टिमटिमाहट को किस में मर्ज कर देते हैं? सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष करते हैं और अपन को गुप्त कर देते हैं। बाप प्रत्यक्ष हुआ माना सब कुछ हुआ। तो इसलिए बोला, क्या बोला कि तुम बच्चों को कौन सी सर्विस करनी है? म्यूजियम की सर्विस करनी है और प्रदर्शनी की सर्विस करनी है। सबसे मुख्य चित्र कौन सा बताया? लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बहुत ध्यान देना है। इस चित्र को बहुत महत्व देना है, जड़ चित्र को या चैतन्य चित्र को। है दे रहे हैं महत्व तो। है क्यों? चैतन्य चित्रों को महत्व दे रहे हैं। बुद्धि में तो सबकी बैठ गया होगा क्यों चैतन्य चित्र एडवांस पार्टी में कौन है, लेकिन महत्व उतना अभी दे नहीं रहे हैं। व्यंग मार्ग की सर्विस कब होगी? जब उन चित्रों की प्रत्यक्षता में विशेष ध्यान देंगे। ध्यान देंगे तो कौन सी स्टेज में पहुंचेंगे? हैं? पहले जन्म की प्रजा बनने की स्टेज में पहुंचेंगे। कैसी प्रजा? प्रजा की भी फोर्थ कैटेगरी, चार कैटेगरी बताई है। फर्स्ट कैटेगरी क्या? बड़े बड़े साहूकार कहाँ बैठते हैं? जब राज्यसभा लगती है तो बड़े बड़े साहूकार कहाँ बैठते हैं? सभा में नीचे बैठते हैं या राज दरबार में सात की कुर्सियों में बैठते हैं? सात की कुर्सियों में बैठते हैं। तो वो ही प्रजा है, वो कोई राजा राजा नहीं होते। फिर राज्याधिकारी होते हैं, उसको भी प्रजा कहते हैं, क्योंकि सतयुग में राजा तो सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब क्या होते हैं? या तो राज्यधारी होंगे, साथ में राज्य को चलाने वाले होंगे, या फिर फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा होगी, सेकंड क्लास साहूकार प्रजा होगी, या फिर थर्ड क्लास प्रजा होगी, या दास दासी बनने वाले, चांडाल बनने वाले फोर्थ क्लास प्रजा होगी। तो बिहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनेंगे या बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, क्या इस ज्ञान को सुनने वाले तो बहुत हैं, सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते। क्या प्रजा बनना? ये तो सुनने सुनाने से और समझने समझाने से हो जाता है, लेकिन ऊंच पद पाने के लिए क्या करना पड़े? गहरा पुरुषार्थ करना पड़े। उसके लिए कहा जाता है कोटों में कोई, क्या क्या कहते हैं? कोटों में कोई और कोई में से भी कोई। स्कॉलरशिप भी कोई कोई लेते हैं ना, 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। 10-11-90 की वाणी का तीसरा पेज कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी स्कॉलरशिप दे देते हैं। क्या कहा? 40-50 बच्चों का क्लास होता है, उसमें एक को स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अगर कोई दूसरा भी उसी के समकक्ष नंबर लेने वाला निकल आता है तो क्या करते हैं? उसको प्लस में डाल दिया जाता है। ये भी ऐसे विज्ञान सतयुग के पहले जन्म के हो गए, लेकिन प्लस में नंबर फिर कौन ले लेता है? हैं? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं वो फिर प्लस में नंबर ले लेते हैं। तो ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत हैं, 8 दाने हैं तो भी नंबर वार हैं। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे। क्या कहा? पहले पहले राजगद्दी पर कौन बैठेंगे? जो 8 दाने हैं, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डायनेस्टी चलती है, तो कौन से लक्ष्मी नारायण की बात की होगी? जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है उनके लिए बोला ये है लक्ष्मी नारायण नंबर 1, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। परंतु चित्र इन लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। किनका? परंतु चित्र सिर्फ इन लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। बाबा इशारा करते थे किसकी तरफ? हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ। कौन से चित्र की तरफ? जो आज के लक्ष्मी नारायण के चित्र बना दिए उनकी तरफ, या जो आदि में साक्षात्कार से बनाए गए थे उनकी तरफ? इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी चेंज करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं चेंज करना चाहिए? क्योंकि जो पहली बार लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया गया है साक्षात्कार से बाबा के समय में, वही असली चित्र पहले जन्म का। बाद में जो चित्र बनाए हैं वो दूसरे दूसरे धर्म वालों ने दूसरे दूसरे फीचर्स देकर बना दिए। देखे हैं वो चित्र? दूसरे फीचर्स वाले लक्ष्मी नारायण के चित्र देखे हैं? नहीं देखे? जब बाबा का डायरेक्शन है कि पहले जन्म के चित्र बनाने चाहिए, लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी चेंज नहीं करने चाहिए, तो बाबा का इशारा है اونچتے اونچے راجائی کی طرف. کون سی اونچتے اونچے راجائی؟ جو نر سے ڈائریکٹ نارائن بنتی. یہاں تم جانتے ہو چتر تو بدلتے جاتے ہیں. کیا کہاں یہاں براہمنوں کی دنیا میں تو لکشمی نارائن کے چتر بدلتے جاتے ہیں. چتر دینے سے کیا فائدہ اگر چتروں کے فیچرز بدل دیے؟ نام روپ دیش کال سب بدلتا جاتا ہے تو فیچرز بھی. فرسٹ جنم کے لکشمی نارائن کے فیچر الگ ہوں گے, دوسرے نمبر کے لکشمی نارائن جو بنیں گے دوسری پیڑھی میں ان کا چتر الگ ہوگا, چہرہ الگ ہوگا. میٹھے میٹھے روحانی بچوں کو روحانی باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں. کل پہلے بھی باپ نے سمجھایا تھا, ایسے نہیں کسی نے گوپ گوپیوں کو سنایا. کیا کرشن نے گوپ گوپیوں کو نہیں سنایا؟ کرشن کے گوپ اور گوپیاں نہیں ہوتے. کیا تھا؟ کرشن کے گوپ اور گوپیاں نہیں ہوتے. گوپ گوپیاں مانا گپت پاٹ بجانے والے کرشن کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جو شیو بابا کا پارٹ ہے پریکٹیکل میں اس کے ساتھ گپت پارٹ بجانے والے گوپ اور گوپیاں ہوتی. نہ ان کو گیان سکھایا جاتا ہے. کن کو؟ جو کرشن کے ساتھ گوپ گوپیاں ہوتے ہیں, کرشن عرف برہما کے ساتھ جو گوپ گوپیاں ہوتے ہیں ان کو کیا نہیں سکھایا جاتا؟ گیان سکھایا نہیں جاتا. کیا کیا جاتا ہے؟ صرف سنایا جاتا ہے. وہ تو ستیوگ کا پرنس بنے گا. کون؟ کرشن عرف برہما. وہ تو ستیوگ کا پرنس ہے, وہاں کیسے راجیوگ سکھائیں گے؟ وہاں پتت کو پاون بنائیں گے. کیا وہ پتت کو پاون نہیں بنائیں گے؟ اب تم اپنے باپ کو یاد کرو. باپ پھر ٹیچر بھی ہے. کیا کہا؟ اور دنیا میں جو باپ ہوتا ہے وہ اکثر کر کے ٹیچر نہیں ہوتا ہے. یہاں تمہارا باپ کیسا ہے؟ وہ باپ باپ بھی ہے, جنم دینے والا باپ بھی ہے جسے پرجاپتا کہا جاتا ہے, اور پھر ٹیچر بھی ہے, سمجھانے والا ٹیچر ہوتا ہے. ایک ایک واقعے کو ہجے ہجے کر کے سمجھاتا ہے, اس کو ٹیچر کہا جاتا ہے. گدے اور پدے کو کلیریفائی کر کے سمجھاتا ہے. ہماری گدی کون سی ہے؟ پدی کون سی ہے؟ پروز اور پوئٹری کون سی ہے؟ پوئٹری ہے مرلی اور پروز ہے ابھیکت وانی. ٹیچر کو اسٹوڈینٹ کبھی بھول نہیں سکتے, باپ کو بچے بھول نہ سکے, گرو کو بھی بھول نہ سکے. تو تمہارے باپ کی وشیش خصوصیت کیا ہے؟ وہ باپ بھی ہے, سمجھانے والا ٹیچر بھی ہے, اور اسی روپ میں ستگرو بھی بنتا ہے. مانے ایک ہی فیچر سے وہ باپ بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, ٹیچر کا بھی کام کرتا ہے اور ستگرو بھی بنتا ہے. باپ تو جنم سے ہی ہوتا ہے, ٹیچر پانچ برس کے بعد ملتا ہے. کیا ٹیچر بعد میں ملتا ہے, پھر گرو بانپرستھ اوستھا میں ملتا ہے. کیا کہا؟ بانپرستھ اوستھا مانا جب بانی سے پڑے چلے جاتے ہیں. بہت گیان سن لیا اور بہت گیان سنائے دیا, اب کیا کرنا ہے؟ اب سننے سنانے سے دنیا میں کچھ بھی پریورتن نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے؟ کیا راستہ بتایا؟ منسا سیوا کرنی. تو منسا سیوا جب ہوتی ہے شروع, منسا سیوا وہی کر سکیں گے جن کی اپنی منسا ایکاگر ہو. اگر اپنی منسا ہی ایکاگر نہیں ہوگی تو منسا سیوا نہیں کر سکتے. تو بولا جب منسا سیوا کرتے ہیں تو واچا میں آنے کی دل نہیں ہوتی, تو گرو وانپرستھ اوستھا میں ملتا ہے. جب وانی کی پرے کی اسٹیج میں چلے جاتے ہیں تو کون ملتا ہے؟ جو باپ ٹیچر ستگرو میں سب سے اونچا روپ ہے वो बच्चों को मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं? क्या कहा? गुरु किस लिए किया जाता है? गुरु किया जाता है सदगति के लिए, और सदगति हुई नहीं, गुरु किया और मर गए, तो सदगति हुई या मरने के बाद और दुर्गति होगी? अगला जन्म मिलेगा वो तो नीचा ही मिलेगा। गाते भी सदगुरु बिगड़ गति नहीं, सदगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते हैं। क्या सतगुरु जो है उसको छोड़ देते हैं और किसको पकड़ लेते हैं? जो ढेर के ढेर गुरु हैं और मनुष्य गुरु उनको पकड़ लेते हैं। गुरु तो ढेर है, सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है, दूसरे सब गुरु कैसे होते हैं? हैं? दूसरे सब गुरु नहीं है, गुरु है। क्या कहा? गुरुर गुरुर करते रहते हैं। माना मांगते हैं और मांगने से कोई नहीं देता है तो गुरुर गुरुर करते हैं। तो ऐसे गुरु जो है वो तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते। सर्व का सदगति दाता एक ही गुरु है, जिसे सतगुरु कहा जाता है। देखो लोग क्या कहते हैं, एक सतगुरु अकाल मूर्त। तो एक सतगुरु है तो बाकी सब कैसे हो गए? बाकी सब झूठे गुरु हो गए। तो दूसरे सब गुरु गुरु हैं, ब्रैकेट में खुद ही लिख दिया मांगने वाले, पुरानी मुरली है। बाबा कहते रहते हैं मांगने से मरना वाला, बाबा क्या कहते रहते हैं? बेसिक में ही नहीं कहते रहते थे, अभी एडवांस में भी कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? मांगने से मरना वाला। माना मांग मांग करते हो, इससे तो अच्छा तुम मर जाओ। क्या कल मरते हो तो आज आज मर जाओ, मांगने से मरना वाला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इसी पुरानी शक्ति में अल्पकाल के लिए उनको मिल जाता है। यहां तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर होता है। क्या कहा? वहां गुरुओं को देते हैं तो रिटर्न क्या होता है? इसी पुरानी दुनिया में आकर के फिर वो जन्म लेते हैं, और पुरानी दुनिया में ही आकर के उनको प्राप्ति एक जन्म की हो जाती है। ये हद में भी है और बेहद में भी है। बेहद में कैसे? मान लो हद में किसी ने इस जन्म में बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई, तो अगले जन्म में क्या मिल जाएगा? है? अगले जन्म में राजा बन जाएंगे, मेहलवानियां अटारियां मिल जाएंगी। ये तो स्थूल बात हो गई, और यहां बेहद में क्या बात होगी? है? हाँ, कोई बहुत दान देते हैं तो उनको बहुत मान मर्तबा मिल जाता है, लेकिन वो एक जन्म के लिए मिलता है या 21 जन्मों के लिए मिलता है? एक जन्म के लिए मिलता है। तो यहां तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए होता है। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है, इन देहधारी धर्म गुरुओं के आगे अर्पण नहीं करना है, ये मिसयूज करेंगे। अगर देहधारी गुरुओं को दिया तो एक जन्म के लिए मिलेगा, और प्रभु को दिया तो 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होगी। प्रभु के आगे अर्पण करना है तो जब आए तब अर्पण करेगा ना,
کیا کہا ہے؟ ایسے تھوڑے کہ دور بیٹھے بیٹھے دور بیٹھے ہی بیٹھے ارپن کر دے گا. کب کرے گا؟ جب نشچے بدھی ہوگا تو سامنے آئے گا. کیا کہا نشچے بدھی کی پہچان؟ مرلی میں نشچے بدھی کی پہچان کیا بتائی؟ نہیں, پہچان بتائی جس کو نشچے ہو جائے گا وہ ایک سیکنڈ بھی رک نہیں سکتا, بھاگے گا باپ سے ملنے کے لیے. اگر نہیں بھاگتا تو سمجھو اس کو نشچے نشچے نہیں بیٹھا, اس کو تلخ ہو جائے گی, کشش ہونے لگے گی, تو سمجھ لو اس کو نشچے بدھی ہو گیا. تو بولا تن من دھن پربھو کے آگے ارپن کرنا ہے, سو تو جب آئے تب ارپن کریں گے نا. کہاں آئے है? کہاں آئے؟ پربھو کے آگے آئے تو ارپن کرے گا نا. پربھو کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے, پربھو کو نہیں جانتے ہیں تو کس کو ارپن کرتے رہتے ہیں؟ انہیں دیہداری دھرم گروؤں کو ارپن کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ بیسک میں ہو اور چاہے ایڈوانس میں ہو. ایڈوانس میں بھی ایسے بھلے بابا نے بولا ہوا ہے لیکن پھر بھی کریں گے کیا؟ کس کو دیتے رہیں گے؟ دیداری گرو کو دیتے رہیں گے. کوئی جانتے ہی نہیں ہے تو دیں گے کس کو؟ تو گرو کو پکڑ لیتے ہیں, دھن آدھی گرو کے آگے ارپن کر دیتے ہیں. بارش نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ گرو کے حوالے کر دیتے. آج کل قاعدے انوسار ایشور ارتھ کوئی دیتے نہیں ہیں. کیا کہا؟ قاعدے انوسار. کیا قاعدہ بتایا ہے؟ دان کا بھی قاعدہ بتایا ہوا ہے. کیا قاعدہ بتایا ہے؟ ایک ہاتھ دینے والا اور دوسرا لینے والا اور تیسرے کو پتا بھی نہ چلے تو کہیں گے وہ قاعدے کا دان. اور دکھا دکھا کے دیا بابا یگ کے لیے یہ چیز ہم دے رہے ہیں, لے خرید لینا, باندھ دے, ناک کان باندھ کے رکھ دیے کہ پیسہ خرچ کرنا ہے تو اس میں خرچ کرنا ہے تاکہ سب کو پتہ لگ گیا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیسہ کس لیے دیا گیا؟ برہما بھوجن کے لیے دیا گیا. تو برہما بھوجن کے لیے دیا گیا تو اس کا بھاگی بنا, وہ تو قاعدے انوسار دان ہی نہیں ہوا. برہما بھوجن تو تب کہا جائے جب برہما کی گھوٹ سے ہی نکلا ہوا ہو. کیا کمایا ہوا دوسروں کا ہے اور سب نے جان بھی لیا ہے یہ دوسرے کا دیا ہوا ہے تو اس کو برہما بھوجن نہیں کہیں گے. تو بولا آج کل قاعدے انوسار ایشور ارتھ کوئی دیتے نہیں ہے. سب کی بات بولی है? جس سمے یہ مرلی چلائی جا رہی ہے اس سمے کی بات بولی. آج کل قاعدے انوسار کوئی دیتے نہیں ہے. کیوں ایسے کیوں بولا؟ کیوں بولا قاعدے انوسار دیتے نہیں ہے؟ ہاں, ایک تو اس سمے باپ آیا نہیں تھا, باپ کی پہچان ہی نہیں تھی, اور دوسری بات ہاں گرو لوگ بیچ میں تھے. برہما کو بھی گرو کہیں گے یا سدگرو کہیں گے؟ گرو لوگ تھے. تو باپ سمجھاتے ہیں باپ بہت غریب نواز ہے. کیا باپ بہت غریب نواز ہے اس لیے میں بھی آتا ہوں بھارت میں. زیادہ غریب کہاں ہوتے ہیں؟ بھارت میں آتا ہوں, تم کو آ کر کے وشو کا مالک بناتا ہوں, تم بھارت واسیوں کو آ کر کے وشو کا مالک بناتا ہوں. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں کتنا فرق ہے. کیا کہا؟ کس بات میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہے؟ نہیں, جو بچے سنمکھ آ کر کے باپ کے ڈائریکٹ بچے بنتے ہیں, ڈائریکٹ پڑھائی پڑھتے ہیں, ڈائریکٹ قاعدے انوسار دیتے ہیں, उनके लिए बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? देहधारी गुरुओं के भी थ्रू किया तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट। तो वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्थ अर्पण करते हैं। ये है सब बेसमझी की बातें। क्या कह दिया हम ईश्वर अर्थ करते हैं और देते किसको हैं? गुरुओं को। ये सब बेसमझी है। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम समझ से समझदार बने हो, बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। क्या कहा? किससे मिलना चाहिए? जो 500 करोड़ का बेहद का बाप होगा उससे ही वर्षा मिलेगा। जिस तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपना बाप स्वीकार करेंगी उससे वर्षा मिलेगा। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। क्या बाप से वर्षा किसके द्वारा लेते हो? दादा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। क्या कहा? दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। उनसे माना किससे? भविष्य में बचने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। इनको याद? किनको? ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उनको ही याद करना है। किसको कहा? बेसिक वालों को या एडवांस वालों को? हैं? बेसिक वालों को कहा, एडवांस वालों को नहीं कहा कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है। एडवांस में भी ऐसे हैं, ब्रह्मा को ही गुरु भगवान समझ लेते हैं। क्या जैसे उन गुरुओं को दिखाया ना, वो गौ मुख में हाथ डाल के क्या करते हैं? राम 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 राम। मुंह से राम राम कहेंगे, हाथ कहाँ पड़ा हुआ है बुद्ध रूपी गौ के मुख में? कितना पड़ा हुआ है गौ के मुख में? गौ कौन सी होती है? सबसे बड़ी गौ कौन सी है? कामधेनु गौ किसको कहा जाता है? जगदम्बा को। तो दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। किसको याद करना है? जो वर्षा देने वाला एक बाप है उसको ही याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। क्या कहा? इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूं। क्या? इनमें प्रवेश कर किन में? इनमें को कहा, इसमें क्यों नहीं कहा? है दो आत्माएं, ये दो बैलों की जोड़ी है। क्या शुरुआत में जब कांग्रेस सरकार चली थी उसका चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह, दो बैलों की जोड़ी। तो मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाता हूं। क्या कहा? कैसे पावन बनाता हूं? प्रवेश करके इनको पावन बनाता हूं, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते। बैज पर तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकती हो। क्या कहा? काय पर सर्विस अच्छी कर सकते हो, प्रदर्शनी पर सर्विस अच्छी कर सकते हो, म्यूजियम पर सर्विस अच्छी कर सकते हो, फिर बैज पर बहुत अच्छी सर्विस कर। बैज में क्या होता है? है? वो भक्ति मार्ग का जो बैज होता है बेसिक नॉलेज में, उसमें क्या होता है? वो तो जड़ बैज होता है, जड़ जेब में लगा लेते हैं। हमारा बैज कौन सा है? हैं? हाँ, उस बैज में, जड़ बैज में जड़ चित्र दिए हुए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु शंकर और दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण। तो हमारा बैज कौन सा है? जड़ है या चैतन्य है? हमारा चैतन्य बैज, हमारी बुद्ध रूपी पाकिट में हमेशा पड़ा रहता है। क्या ये दिखाने की चीज नहीं है? कैसा है ये बैज? कहाँ डालने के लिए बोला मुरली में? पॉकेट के अंदर डालने के लिए बोला कि बाहर दिखाने के लिए बोला है? वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाहर निकाल के दिखा देते हैं कि देखो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारे बैज पड़ा हुआ है, लेकिन बाबा ने बाहर दिखाने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? पॉकेट में बैज पड़ा रहे तो वो हद की पॉकेट नहीं, कौन सी? बेहद की पॉकेट। ये बुद्ध रूपी पॉकेट में जिनके ये पड़ा हुआ होगा कि ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन है, विष्णु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन है और शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन है, ये तीनों मूर्तियां जिसकी बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ी हुई है, उसकी बुद्धि में जैसे बुद्ध रूपी पॉकेट में जैसे बैज पड़ा हुआ है। और कौन लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं इनमें से? तीन मूर्तियां तो हैं, लेकिन इनमें लक्ष्मी नारायण कौन से बनने वाले हैं अंत में, वो भी फिर उलट के दिखा दो। तो जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है वो समझ सकते हैं कि बैज पर कितनी अच्छी सर्विस हो सकती है। बैज पर तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित। क्या कहा? तुम्हारा बैज भी अर्थ सहित है, बिना अर्थ के नहीं है। ये तो जीए देन देने वाला चित्र है। कौन सा चित्र? बैज का जो चित्र है जिसमें त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया हुआ है, ये कैसा चित्र है? जीए दान देने वाला चित्र है। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं ब्राह्मण बन करके, उनको प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता है तो न मिलने से वो टूट पड़ती है। बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान में चलते रहे, बेसिक नॉलेज में, और चलते चलते छोड़ करके ज्ञान से वंचित हो गए, तो उनको जीए दान मिला या मर मिलाए गए, मर गए। तो ऐसे जो मरे हुए हैं उनको इन चित्रों पर समझा करके जीए दान दे सकते हो। इनकी वैल्यू का किसी को पता नहीं है। किनकी वैल्यू का है? ये त्रिमूर्ति का जो चित्र बताया, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र बताया, इनकी वैल्यू का अभी किसी को पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है। क्या कहा है? बाबा को और दूसरे चित्र पसंद, ढेर के ढेर चित्र बना दिए माया की मत पर, वो चित्र सब पसंद नहीं आते। क्या पसंद आता है बाबा को? लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति का चित्र बहुत पसंद आया। बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। क्या? दूर से ही उनको पढ़ सके, माना समझ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।